मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, सच पूछिए तो आज का दिन भोपाल के लिए बहुत ही शोक का दिन है। वह कैसे? आपने एक दुर्भाग्यजनक घटना के बारे में सुना है कि बिपिन रावत जी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके जो हमारे सभी साथी थे उनका दुर्भाग्यजनक निधन उसी समय हो गया था, लेकिन उसमें एक नौजवान व्यक्ति बच गए थे, वरुण सिंह, जो ग्रुप कैप्टन थे। दुर्भाग्य से वे भी नहीं रहे, और यह एक विचित्र सा संयोग है कि वो भोपाल के रहने वाले थे, उनके पिता भोपाल में ही रहते हैं, और आज उनका अंतिम संस्कार भोपाल में ही किया जाना है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भोपाल आज उनके इस स्मृति को बर्दाश्त कर रहा होगा, सहन कर रहा होगा। एक नौजवान जो इस शहर का था शहीद हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनकी इस स्मृति को बहुत ही भावुक भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और मित्रों, इसी के साथ ही मैं आज आप सबके सामने एक श्रद्धांजलि के रूप में स्टेन गेबार्ड की जो कविता है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने जो अपनी कुर्बानी दी है, आइए हम उसे याद करें। कविता है, उसका शीर्षक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं कविता पढ़ रहा हूं, इसे आप पुष्पांजलि समझ लें। मैं उस दिन आपकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मैंने सोचा आप मेरी तरफ देखेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा मैं आपसे प्यार करता हूं और इंतजार किया कि आप भी यही कहेंगे। मैंने सोचा कि आप मेरी बात सुन लेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि बाहर आकर मेरे साथ बैट बॉल खेलें। मैंने सोचा कि आप मेरे पीछे आएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने एक तस्वीर बनाई सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैंने सोचा आप इसे संभाल कर रखेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने जंगल में हम दोनों के लिए एक किला बनाया। मैंने सोचा कि आप मेरे साथ कैंपिंग करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने मछली पकड़ने के लिए कुछ कीड़े इकट्ठे किए। मैंने सोचा आप मेरे साथ मछली पकड़ने चलेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे कुछ बातें करने के लिए, विचार बताने के लिए आपकी जरूरत थी। मैंने सोचा आप सुनना चाहेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मेरा मैच होने वाला है और उम्मीद की कि आप देखने आएंगे। मैंने सोचा आप जरूर आएंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने पूरी किशोरावस्था में आपके करीब आने की कोशिश की। मैंने सोचा कि आप भी करीब आना चाहेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं युद्ध में देश की तरफ से लड़ने गया। आपने मुझे सुरक्षित घर लौटने के लिए कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, बहुत अजीब है ये जीवन, और क्या किया जा सकता है कि वक्त रहते शायद हम समझते नहीं हैं, वक्त बीत जाता है तो फिर पता नहीं कौन कौन सी बातें समझ में आती हैं। खैर, एक बार फिर से मैं वरुण सिंह को अपनी और आप सबकी ओर से बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, मुख्य विषय के तहत यदि समय रहा तो मैं सेमी कंडक्टर के बारे में आप सबसे बातें करूंगा, लेकिन दूसरी खबरें आज ज्यादा हैं, तो आइए पहले उन्हें देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश 50वां विजय दिवस मना रहे हैं। 50वां विजय दिवस, इस अवसर पर हमारे राष्ट्रपति जी वहां गए हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर मुझे लगता है कि आप सबकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। कुछ साल पहले भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि चूंकि 50वां दिवस समारोह मनाया जा रहा है, विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाए। तो मैं इसके बारे में यहां चर्चा करने नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वक्त की मांग करता है, लेकिन आपसे यह मैं जरूर कहूंगा कि यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। कल संसद में सरकार ने बयान दिया है, बताया है आप कह लीजिए, कि तीन वस्तुओं के लिए, तीन वस्तु प्याज, आलू और दाल, प्याज आलू और दाल, इसके लिए सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की है। देखिए, मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी कि एक ऐसा फंड जिसका उद्देश्य मूल्य को स्थिर करना होता है। तो ये तो फंड की बात हो गई। अगर हम अनाज वगैरह इकट्ठा करें या मान लीजिए कि प्याज गोडाउन में इकट्ठा करें तो फिर वो वस्तु हो जाएगा। तो ये मूल्य स्थिरीकरण कोष है। इसमें किया क्या जाएगा? इसमें जो प्याज है, आलू है, दाल है, इनका स्टॉक रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बाजार में प्याज की कीमत बहुत बढ़ जाती है, आलू की कीमत बहुत बढ़ जाती है, दाल की कीमत बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप देखिए कि फिलहाल दाल की कीमतों के बारे में काफी बातें हो भी रही हैं कि बहुत कीमतें बढ़ गई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम आर्थिक सिद्धांत को अप्लाई करें तो इन वस्तुओं की डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई नहीं है, तो कीमतें बढ़ गई हैं। अगर किसी कारण से सरकार इन वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ा दे, आपूर्ति को बढ़ा दे, तो कीमतें स्थिर हो जाएंगी या कम हो जाएंगी या पहले जितनी पहुंच जाएंगी। अब सवाल यह कि सरकार आपूर्ति को बढ़ाए कैसे? तो सरकार ने कोष बनाया है कि ठीक है, सरकार के पास प्याज है, सरकार के पास दाल है, सरकार के पास आलू है, जैसे ही बाजार में इनकी कीमतों में वृद्धि होगी सरकार अपने गोडाउन से निकाल करके ये बाजार में सप्लाई कर देगी और इससे जो है मांग के बराबर सप्लाई हो जाएगी और मूल्य अपने पूर्ववत स्थिति में या कह लीजिए थोड़ा बहुत अधिक होकर के स्थिर हो जाएंगे। ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। कल अगर आपने टीवी न्यूज सुना हो तो उसमें एक आंकड़ा था, मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि भारत अब डिफेंस उत्पाद के मामले में जो हमारी रक्षा की जो आवश्यकताएं होती हैं लगभग 65-70% हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 65-70%। दोस्तों, इसी तरह का एक और डेटा है, अभी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 आई है और इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो ये है कि जो महिलाएं हैं रोजगार के लायक, स्किल्ड महिलाएं हैं, उनकी सबसे बड़ी जो संख्या है वो तेलंगाना में है। तेलंगाना की महिलाएं इसके लिए सबसे ज्यादा योग्य हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको अगर इसकी रहेगी तो आप अपनी बातों को ज्यादा तर्कपूर्ण तरीके से रख सकेंगे यदि अवसर मिला तो। दोस्तों, हमारे कैबिनेट ने कल कई डिसीजन लिए हैं और उसमें एक जो महत्वपूर्ण डिसीजन है विधेयक को लेकर के, और डिसीजन ये लिया गया है कि एक विधेयक लाया जाएगा। देखिए, जब भी संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कई बार मैं बीच बीच में बात कर चुका हूं कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है, एक विधेयक लाया जाएगा और उस विधेयक में व्यवस्था ये की जा रही है कि लड़के और लड़कियां दोनों के विवाह की जो न्यूनतम उम्र होगी एक जैसी कर दी जाएगी और वह होगी 21 वर्ष। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है ना, वो तैयार होगा 21 वर्ष। और इसके तहत यह भी व्यवस्था की गई है कि यह जो 21 वर्ष की जो न्यूनतम उम्र है यह सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा और सभी वर्ग के लोगों पर लागू होगा। यह आपकी जानकारी में होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है सेमीकंडक्टर के बारे में। भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित भी कर दिए हैं जो 6 साल में खर्च होंगे। जो हमारे सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, बकायदे प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे लगभग 1.35 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा और 35,000 से ज्यादा लोगों को तो सीधे रोजगार मिलेगा और बाकी जो थोड़ा सा 1 लाख लोग जो होंगे उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। आप जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है उनका इस्तेमाल किन किन कार में होता है, आपके मोबाइल में होता है, इस तरह की चीजों में सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है। खासकर जब कोरोना का पीरियड था तो उस समय सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा कमी महसूस की गई, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो दुनिया में सबसे अच्छे जो देश हैं वो है ताइवान जो चीन के अधीन है, दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसे देश। तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई, भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी परेशानी हुई। और भारत ने उसी समय यह फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीच बीच में यह बयान भी दिया था कि भारत सेमीकंडक्टर का हब बनेगा, कि हम अब सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर होंगे। क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ अपनी निर्भरता बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा, जिसे अभी भारत महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए बकायदे कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया है, इस पर एक मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन भी स्थापित किया जाएगा जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। भारत की एक बहुत बड़ी ताकत यह है कि दुनिया में जो सेमीकंडक्टर डिजाइन करने वाले जो लोग हैं, सबसे ज्यादा ऐसे लोग भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के दुनिया में जाकर के डिजाइन कर रहे हैं, तो भारत में भी इसका डिजाइन करें। और जो सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है तो उसके तहत पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, मतलब डिजाइन करना, उसकी पैकेजिंग होना, उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं वे सब के सब भारत में ही बनाने के लिए बकायदे सरकार कदम उठा रही है। और इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और जो स्टार्टअप होंगे उनके लिए भी स्कीम तैयार की गई है, जिसे कहा गया DLI स्कीम। उसके तहत बकायदे सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देगी और ये जो राशि है लगभग 50% तक है, जो काफी कही जा सकती है। नो डाउट कि अगर विदेश की कंपनियां भारत में आकर के सेमीकंडक्टर बनाना चाहेंगी तो उन्हें भी इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, आपको इसकी तैयारी थोड़ी बेहतर तरीके से कर लेनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि डेफिनेटली इस पर आगे चल करके एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे और हो सकता है कि आर्टिकल्स भी आएंगे, तब हम लोग इस पर और यदि जरूरत हुई तो फिर बात करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। हमारी ऑफलाइन क्लासेस 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में होने वाली हैं। इसके लिए राकेश कुमार गौर जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अनंत चौहान भाटेगांव महाराष्ट्र से, हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से, जिज्ञासा मीना, मुकेश गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से, निधि मीना और सूर्यप्रकाश, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।